ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।
अध्याय 17 कैमास वध। पृथ्वीराज के पुत्र रेणु सिंह तथा चामुंड राय में बहुत घनिष्ठता थी। दोनों मामा भांजे एक दूसरे को बहुत स्नेह की नजर से देखते थे। यह बात बहुत लोगों को खटकती भी थी। एक दिन मौका पाकर चंद पुंडीर ने यह बात पृथ्वीराज से कही कि मुझे कुछ दाल में काला दिखाई देता है। चामुंड राय आपके पुत्र को अपने वश में करके दिल्ली पर अधिकार जमाना चाहता है। हालांकि यह सुनकर पृथ्वीराज ने उस समय चामुंड राय से कुछ भी नहीं कहा, फिर भी यह बात उनके दिल में चुभ गई। इसके बाद अचानक एक दिन पृथ्वीराज का हाथी खुल गया और बहुत सारे मनुष्यों को मारता हुआ इधर उधर घूमने लगा। एक गली में उसका और चामुंड राय का सामना हो गया और वह चामुंड राय पर झपटा। चामुंड राय को कहीं भी हटने की जगह नहीं थी, इसीलिए उसने तलवार का एक ऐसा वार किया कि हाथी की सूंड कट गई और वह भराकर गिर पड़ा और वहीं मर गया। एक तो पृथ्वीराज के कान पहले से ही भरे जा रहे थे, दूसरे चामुंड राय के द्वारा इस हाथी के मारे जाने का समाचार जब पृथ्वीराज ने सुना तब वह बहुत नाराज हो गए और उन्होंने चामुंड राय को गिरफ्तार करने के लिए गुरुराम और लोहाना अजान बाहु को भेजा। जब यह समाचार चामुंड राय के पास पहुंचा तथा उसके इष्ट मित्रों को पता चला तो सब युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, परंतु स्वामी भक्त चामुंड राय ने सबको समझा बुझाकर शांत किया और उसके खुद के हाथों अपने पैरों में बेड़ी डाल ली। बस इसी जगह से पृथ्वीराज के अधय पतन का समय शुरू हो गया। चामुंड राय को कैद करके पृथ्वीराज शिकार खेलने चले गए। इस समय कैमास पर दिल्ली के शासन का भार था। एक दिन आकाश में खूब सारे बादल छा रहे थे और बरसात का मौसम था। कैमास अपने कई सिपाहियों के साथ किसी जरूरी काम से राजमहल की ओर जा रहे थे। उस समय कर्नाटकी अपना श्रृंगार करके बैठी हुई बारिश का आनंद ले रही थी। देवयोग से कैमास तथा कर्नाटकी की आंखें चार हो गईं और दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। कर्नाटकी तो वैश्यापुत्री थी ही और दूसरा पृथ्वीराज उस समय दिल्ली में नहीं थे। कर्नाटकी कैमास पर मुग्ध हो गई, परंतु इतने बुद्धिमान तथा स्वामी भक्त होने पर भी कैमास किस तरह इस पाप कर्म में लिप्त हुए इसका कुछ पता नहीं चलता है। कैमास रात के समय कर्नाटकी के पास जा पहुंचा। इस समय रानी इच्छन कुमारी के मन में कुछ संदेह हो गया। उसने चुपचाप इस बात का पता लगा लिया कि कैमास तथा कर्नाटकी में अनुचित संबंध है। उसने फिर पृथ्वीराज के पास अपनी दासी के द्वारा यह समाचार कहला भेजा। दासी से सारा हाल सुनते ही पृथ्वीराज उसी समय वहां से चल पड़े। पृथ्वीराज चुपचाप रात के समय आए और उन्होंने अपनी आंखों से कैमास तथा कर्नाटकी को इकट्ठे सोते हुए देख लिया। उन्होंने उसी समय कैमास को सिर काटकर मार डाला। पृथ्वीराज ने कैमास को अपने हाथों से जमीन खोदकर उसी जगह गाड़ दिया। कर्नाटकी को भी कैद कर लिया गया, परंतु वह किसी तरह निकलकर भाग गई और सीधी जयचंद के दरबार में जा पहुंची। पृथ्वीराज कैमास को गाड़कर रातों रात फिर उसी स्थान पर चले गए जहां उन्होंने शिकार के लिए डेरा डाला था। कैमास के मारे जाने की खबर किसी को भी नहीं लगी। दूसरे ही दिन पृथ्वीराज शिकार से लौटे। हालांकि कैमास को मारने का निंदनीय काम बहुत ही गुप्त तरीके से किया गया था, फिर भी कवि चंद को किसी तरह पता चल गया। इधर कैमास की खोज होने लगी। कैमास को ना देखकर सारे सामंत चिंतित हो उठे। सबके साथ ही एक दिन दरबार में बैठकर महाराज पृथ्वीराज ने कवि चंद से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि राजमंत्री कैमास कहाँ चले गए? कवि चंद ने पहले तो राजा को यह प्रश्न करने के लिए मना किया, परंतु जब पृथ्वीराज ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तब कवि चंद ने साफ शब्दों में सारी बातें कह दी। पृथ्वीराज को भी अपना दोष स्वीकार करना पड़ा। उस दिन राजसभा में बहुत हलचल मच गई। एक वैश्या के कारण कैमास का मारा जाना सुनकर पृथ्वीराज के परोपकारी सामंत सभागृह से चले गए। धीरे धीरे सारे नगर में यह समाचार फैल गया और सारे घरों में शोक छा गया। सभी राग रंग बंद करके शोक में डूब गए। कैमास की पत्नी यह समाचार सुनकर बहुत दुखी हो गईं। बहुत प्रार्थना करने पर चंद ने बहुत मेहनत से उसके पति की लाश उसे दिलवा दी। कैमास को मार डालने के कारण पृथ्वीराज का बहुत अपमान हुआ। पृथ्वीराज भी अब अपनी गलती समझ गए और दिन रात पश्चाताप करने लगे। इस तरह कुछ दिनों तक पश्चाताप कर लेने के बाद कवि चंद ने उन्हें समझाना शुरू किया और कुछ दिन बाद जब पृथ्वीराज का मन कुछ शांत हुआ तब उन्होंने कैमास के पुत्र नरसिंह को पृथ्वीराज के पास लाकर खड़ा कर दिया। पृथ्वीराज ने कैमास के पुत्र को देखते ही बहुत प्रेम से उसके माथे पर हाथ रखा और हांसीपुर का परगना उसी समय उसको दे दिया। परंतु इतने पर भी प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। रासों से पता चलता है कि कैमास की मृत्यु के कारण दिल्ली में हड़ताल हो गई थी। अंत में एक दिन दरबार लगा, उसमें पृथ्वीराज को अपने मुंह से कैमास की मृत्यु संबंधी सारी घटनाएं बतानी पड़ी और पश्चाताप करना पड़ा। पृथ्वीराज ने कर्ण से बहुत तरह से कहा कि उस समय ईर्ष्या के कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अंत में सारे सामंतों ने उन्हें क्षमा कर दिया। हड़ताल बंद हो गई और राज्य का काम पहले की तरह ही चलने लगा।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।